तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा है, तुम ही देवता हो। जैसे ही आरवी ने ये लाइन अयांश के चारों ओर घूमकर गुनगुनाई और फिर अयांश के सामने खड़ी होकर उसके गले में बाहें डाल मुस्कुराई, तो अयांश पट से उसे दूर कर खुद और दूर हो गया और लड़खड़ाती जुबान से बोला, स्टॉप इट, क्या कर रही हो पता भी है? पागल हो चुकी हो तुम? दिमाग खिल गया क्या जो ऐसी हरकतें कर रही हो? मुझे तो लगता है इस मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हारा भी इलाज करवाना पड़ेगा मुझे। और ये हंसना बंद करो, घूरते हुए, क्योंकि अयांश बोल रहा था और आरवी हंस रही थी। पर तभी आरवी हंसना छोड़ अयांश की ओर आते हुए बोली, इलाज अपना करवाइए मिस्टर मेहरा, मैं अगर अब पागल हुई हूं तो आप तो पागल ही पैदा हुए थे, और मेरा तो दिमाग हिला भी हो तो गम नहीं, आपके पास तो दिमाग भी नहीं। बात तो सही है ना? होता तो सोचने समझने की शक्ति होती, सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत होती। खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी सोचिए, इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर सच में आपसे मुझे प्यार हो जाता तो हे बप्पा, मेरा तो बैठे बिठाए उम्र भर के लिए बैंड बज जाता, मुस्कुराकर गाते हुए। ये सुन अयांश को गुस्सा आ गया और वो आरवी की बाह पकड़ गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, चुप करो, बहुत तमाशा, बहुत ड्रामा कर लिया। ना तो मुझे तुम्हारी इन हरकतों में दिलचस्पी है और ना ही तुम में। मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है मुझे ये सब जानबूझ कर रही हो तुम, पर कोई फ़ायदा नहीं। तो फालतू में अपना दिमाग चलाना बंद करो और मुंह भी बंद रखो और चलो घर। इतना कह अयांश ने गाड़ी की पीछे वाली झांकी खोल आरवी को बैठने को कहा। बैठो। आरवी अयांश की ओर मुड़ते हुए बोली, मैं यहां नहीं बैठूंगी, हाथ बांधते हुए। अयांश भौहें सिकोड़ते हुए बोला, व्हाट? आरवी, यस, अब अच्छा लगता है क्या? मेरा हस्बैंड ड्राइवर की तरह आगे बैठे और मैं मालकिन की तरह पीछे। तोबा तोबा, मैं नहीं चाहती आपको ड्राइवर वाली फीलिंग आए। उम्र भर साथ चलने के वादे कस्में लिए हमने शादी के टाइम, तो अब ना निभाऊं ऐसे कैसे? तो मैं तो आगे ही बैठूंगी आपके साथ, आपके बगल में। ये सुन अयांश कुछ बोल पाता कि आरवी ने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया और खुद भागकर गाड़ी की दूसरी साइड आकर आगे की सीट पर बैठ गई। आरवी की इस हरकत से अयांश का गुस्सा बढ़ गया। उसने नामे सिर हिलाया और पीछे की झांकी जोर से बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुठ्ठियां भींच ली। बेशक आरवी उसे परेशान कर रही थी और वो हो भी रहा था, पर इस वक्त अयांश ने घर चलना ही ठीक समझा, क्योंकि वो आरवी से उलझकर अपना मूड ऑफ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। आरवी को घर छोड़ उसकी अजीब सी हरकतों से बचना चाहता था, क्योंकि आरवी की ऐसी हरकतें कुछ भी गड़बड़ कर सकती थीं और वे इस वक्त बाहर थे, इसलिए अयांश ने घर चलना ही सही समझा और गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अयांश के बैठते ही आरवी बोली, मुझे तो लगा मेरा पति आएगा ही नहीं, मुझे ही गाड़ी चलाकर ले जानी पड़ेगी। ये सुनते ही अयांश उसे घूरते अपना सीट बेल्ट लगाते बोला, सीट बेल्ट लगाओ अपना, फालतू बातें करने की जगह काम की चीज़ों पर ध्यान दे लोगी तो बेहतर रहेगा। आरवी मासूमियत से, ध्यान तो दिया पर ये अयांश मेहरा की गाड़ी का सीट बेल्ट भी उनके जैसा ही समझ से बाहर, टस से मसी ना हुआ, खींचा पर भारी पत्थर जैसे अपनी जगह से हिलाई नहीं, पकड़ में ना आया, अकड़ों किस्म का। सीट बेल्ट की ओर देख आरवी ने अयांश की ओर देखा, जो उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था, तो आरवी ने बतीसी दिखाई और सीट बेल्ट की ओर इशारा कर बोली, आपको नहीं उसको बोला, आई थिंक फंसा हुआ है, मैंने लगाने को खींचा पर निकला ही नहीं, थोड़ा जोर और लगाती तो हाथ बाहर आ जाते मेरे, पर ये ना निकला। ये आपकी चीजें आप जैसी क्यों है मिस्टर मेहरा? अयांश अपना सीट बेल्ट खोल आरवी की ओर झुक सीट बेल्ट निकालते हुए बोला, मेरी चीजें हैं मेरी जैसी होंगी ना, और तुमने हाथ क्यों यूज किए? जुबान करनी थी ना, जुबान से खींचती तो अब तक सीट बेल्ट लगा होता। आरवी अयांश की ओर घूरते हुए बोली, ओ पर मैं जुबान भी यूज करती तब भी ना निकलता, आपकी चीजें सच में आप जैसी हैं, अकड़ से भरी, प्यार कहाँ रास आता है। अयांश के हाथ रुक गए, वो आरवी के चेहरे की ओर देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, प्यार, सब चीजें प्यार से नहीं चलती हैं, सख्ती भी बरतनी पड़ती है। इतना बोल अयांश ने फट से सीट बेल्ट खींचा और उसे आरवी को लगाते हुए बोला, देखा ना, निकल भी गया और लग भी गया। नरजीव चीजें हैं ये मिस्टर मेहरा, सब पर सख्ती अप्लाई करना नॉट गुड, एनीवे चलिए। इतना कह आरवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, पर तभी अयांश अपनी सीट पर होने को हुआ कि आरवी के बाल अपने कोट में फंस गए। आरवी अपना हाथ सिर पर रखते हुए बोली, आ। अयांश अपने कोट की ओर देखते हुए बोला, सिट। आरवी अयांश की ओर गुस्से से देखती हुई बोली, क्या सिट, आपको दिखता नहीं है क्या मेरे बाल खिंच रहे हैं? छोड़िए, तो मैंने कौन से जानबूझकर फंसाया आपने कोर्ट में? संभाल कर नहीं रख सकती अपने बालों को? मैं क्यों संभालूं, मुझे संभालने का ठेका तो आपने लिया है, मेरी किस्मत भी आप लिख रहे हैं आजकल, तो क्या ये भी आप नहीं लिखा था क्या, सीट बेल्ट लगाकर बाल फंस लूंगी? माना कि आपको सख्ती करना पसंद है, पर ये बाल नरजीव जरूर हैं, पर जिसके हैं वो नरजीव नहीं। ओह, आपको तो मुझे दर्द देना है ना। वाह मिस्टर मेहरा, ये तरीका भी सही है आपका। आरवी बोल रही थी कि आयांश चुपके से अपनी हथेली आरवी के मुंह पर रख देता है और गुस्से से गरियाते हुए बोला, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैंने जानबूझकर नहीं किया, पीछे हुआ तो फंस गए। अपना मुंह बंद रखना वरना इन बालों का किस्सा अभी खत्म कर दूंगा, फिर न सिर पर रहेंगे और न मेरे कोर्ट में फंसेंगे, समझी? इतना कह आयांश ने अपना हाथ आरवी के मुंह से हटा लिया और कोट से बाल निकालने लगा। आयांश को अपने कोट से बाल निकालते देख आरवी थूक निगलती मन ही मन बोली, मेरे बालों की बलि न चढ़ने दूंगी मैं, इनका कोई भरोसा नहीं, काटवाट दिए तो बिन बालों के मैं कहाँ अच्छी लगूंगी। बालों की खेती कौन सा आसानी से होती है, बचपन से मेहनत लगी है इन पर, तब जाकर मेरे ये बाल सिल्की प्यारे लंबे घने बने हैं। ये क्या जाने थोड़े से बढ़े नहीं, सैलून जाओ और कटवा कर आ जाओ। लंबे बाल एक दिन में थोड़ी होते हैं, पर ये एक पल ना लेंगे मेरे सिर से बाल अलग करने में। नहीं नहीं आरवी, तुझे तेरे बालों से प्यार है ना, तो अभी चुप रहती हूँ, बाल भी बोलेंगे। थैंक यू आरवी, बाल बाल बच गए। तभी आरवी के मुंह से फिर आह निकला। आयांश ने फट से उसकी ओर देखा तो आरवी धीरे से बोली, आराम से टूट जाएंगे। आयांश, तुम्हें बाल खींचने पर दर्द हो रहा है या बाल टूटने का? आरवी, दोनों, पर बाल टूटने का ज्यादा। दर्द तो मिलते रहते हैं, बाल कौन से जल्दी उगते हैं। ये सुन आयांश ने नामे सिर हिलाया और धीरे धीरे बाल निकालने लगा। जैसे ही बाल निकल गए, आरवी ने फट से अपने हाथों में पकड़े और चूमते हुए बोली, बच गए मेरे बाल। आरवी की इस हरकत पर आयांश ने मुंह से फूका और तभी आरवी ने अपने सारे बाल दूसरी तरफ कर लिए और बोली, मेरे बालों पर नजर मत डालना मिस्टर मेहरा, आपका हर सितम सह सकती हूँ, बालों को छुआ तो छोड़ूंगी नहीं। आयांश अपनी सीट पर होकर सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, संभाल कर रखो फिर, और इतना भी प्यार नहीं मुझे तुम्हारे बालों से जो इनमें खुद को उलझाऊं। मुझे तो प्यार बालों से मेरे, कभी लंबे करके देखना, नानी याद आ जाएगी, अपने बालों पर हाथ फेरते हुए। मैं क्यों लंबे करूं? तो आप बाल छीनने का हक खुद को कैसे दे सकते हो? पता भी है कितना टाइम लगता बाल बड़े करने में। चलिए सिर से अलग करने, दूर रहना पहले ही बता रही हूँ, वरना आपको गांधी जी बना दूंगी। वॉट, गांधी? गांधी कटिंग, टकला, अब समझे या सिंपल बोलूं? तो एक बाल ना छोड़ूंगी अगर मेरे बालों से छेड़छाड़ करने की आपने कोशिश भी की तो। ये सुनते ही आयांश का मन अपने बाल नोचने का किया और आरवी का गला दबाने का भी, पर तभी फिर आरवी बोल पड़ी,
चलिए अब गाड़ी को कोई धक्का लगाने नहीं आएगा, और मैं तो बिल्कुल भी ना देने वाली धक्का वक्का। आयांश ने इस बार आरवी को इग्नोर किया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गए। बीच रास्ते आरवी को फिर खुराफात सूझी और वो थोड़ा सा आयांश की ओर देखते हुए गाने लगी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, चाहे खिर वो करे ला ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, चाहे फिर वो करे ला ही सही, मुंह बंद रखो आरवी वरना तुम पछताओगी। ये सुन आरवी गाना छोड़ सिर्फ हम हम करते गुनगुनाने लगी। आयांश ने उसकी तरफ देखा तो आरवी ने मुंह लॉक है का इशारा किया, तो आयांश सामने देखते हुए बोला, बिल्कुल चुप, कोई भी आवाज नहीं। ये सुन आरवी ने गुनगुनाना भी बंद कर दिया और गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की ओर हाथ बढ़ाने लगी कि आयांश ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रही हो? आरवी हाथ छुड़ाते हुए बोली, यहां भागने से तो रही, खुद नहीं गा सकती पर गाना तो लगा सकती हूँ। आप बहुत बोरिंग हो, मैं बोर हो रही हूँ मिस्टर मेहरा, ऊपर से ये ट्रैफिक, घर पहुँचने में टाइम लगेगा, आपके मुंह पर ताले लगे हैं, वैसे ठीक ही है, बोलेंगे तो भी कड़वा, पर मुझे कुछ अच्छा सुनना है, ऐसे तो ये सफ़र ना कटने वाला आपके साथ, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकती क्या? आप बैठे हो ना, मेरे हिस्से का भी बैठ लो, पति हो इतना तो कर ही सकते हो ना मिस्टर मेहरा, अपनी मिसेज मेहरा के लिए, थोड़ा शर्माते हुए। ये सुन आयांश का जबड़ा कस गया और चिल्लाते हुए बोला, खुद से थोड़ा सा प्यार है तो जबान बंद रखो। आयांश बोल रहा था कि आरवी ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और वॉल्यूम बढ़ाकर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। क्रमशः